Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dhyaye Nityam Mahesam Rajatagiri Nibham Charuchandravatansam Ratnakalpojjwalangam Parasumrigavara Vitihastam Prasannam Padmasinam Samantat Stutamamaraganir Vyagrakritim Vasanam Visvadhyam Visvabandhyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padma Bhavam Vasishtham Shaktim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gauda Padam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Sishyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hasta Malakancha Sishyam Tantu Takam Vartika Karamanyan Asmad Gurum Santatamanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Sriyaha Prapti Nimittaya Namaha Somartha Dharini Om Shanti 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 Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Namah Shivaya Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Namah Shivaya Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Namah Shivaya Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om Namah Shivaya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya Nama Om Haraya Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya Bhavaya Nama Om Bhavaya Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya Mridaya Nama Om Mridaya Nama Om Mridaya Nama Om Namo Mridaya Mridaya Nama Om Mridaya Nama Om Namo Mridaya Mridaya Nama नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम नमो मृडाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नमः शिवाय शिवाय नम ओम
शिवाय नम ओम
शिवाय नम ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम भज मन शिव शिव
निरंतरम
जप मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम 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 कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद के अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में 20वां श्लोक नंबर विश्वा मंत्र न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदारिदिष्टं मनसाय येनम् एवं विदुरं मृतास्ते भवन्ति अजात इत्येवं कश्चित् भीरुः प्रपद्यते रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखम् तेन मां पाहि नित्यम् मानस्तो केतनये मान आयुषि मानो गोखु मानो अस्वे कुरीरिकः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधिर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे तो उपनिषद का प्रसंग चल रहा है, ब्रह्म विद्या का प्रसंग है। प्रतिपाद्य ब्रह्म कैसा है, परमात्मा कैसा है, तत्पद का लक्ष्यार्थभूत वो परमात्मा कैसा है, इस संसार में अंतिम हमारा जो प्राप्तव्य है वह कैसा है, बहुत कुछ प्राप्त किया, प्राप्त कर चुके हैं और भी कुछ प्राप्त करते रहेंगे और प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन समग्र जीवन में अंतिम प्राप्तव्य क्या है, जिसको प्राप्त करने पर फिर और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो अंतिम प्राप्तव्य है। क्योंकि उसके बाद जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर और प्राप्तव्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद जीवन ही नहीं रहेगा तो और कोई कर्तव्य भी नहीं रहेगा, कर्तव्य नहीं रहेगा तो प्राप्तव्य भी नहीं रहेगा, अंतिम प्राप्तव्य। चाहे आज प्राप्त कर लो, चाहे एक वर्ष के बाद कर लो, चाहे एक जन्म के बाद, चाहे दस जन्म के, चाहे लाख जन्म के बाद, वह अंतिम प्राप्तव्य है। उसको प्राप्त होने के बाद ही आपके जीवन का अंत होगा, जीवन का अंत है, शरीर का अंत तो अभी भी हो जाएगा। उसको प्राप्त नहीं करोगे, शरीर का अंत होते ही रहेंगे, लेकिन शरीर के अंत को जीवन का अंत नहीं मानना। एक शरीर का अंत होगा, फिर जीवन दूसरे शरीर से आरंभ होगा, फिर उस जीवन का, उस शरीर का अंत होगा, फिर जीवन तीसरे शरीर से आरंभ होगा। ये एपिसोड तो चलते ही रहेंगे, पता नहीं कितने एपिसोड होंगे, कसौटी के एपिसोड से भी ज्यादा होंगे ये एपिसोड, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कल्पना हो रहा है, कल्पना किए जा रहे हैं। इसी तरह ये जीवन का एपिसोड तो पता नहीं कब से शुरू हुआ है और कब तक चलता रहेगा, तो इसका एक ही उत्तर है, जब आप उसको प्राप्त कर लोगे या उसको जान लोगे, उसके बाद फिर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। नहीं तो एक शरीर जाएगा, दूसरा जीवन आरंभ होगा, उसका फिर अंत होगा, फिर तीसरा आरंभ होगा। ये तो अनादि प्रवाह से अनंत काल तक चलता रहेगा। तो प्रश्न हुआ कि इसका अंत भी होगा कभी, जीवन का अंत भी होगा कभी, तो उसका उत्तर केवल वेदांत देता है और कोई नहीं देगा। वैष्णव शास्त्र इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वह जीव को नित्य मानते हैं, तो फिर जीव का अंत कहां हुआ? जीव के जीवपना का भी अंत मानने वाला केवल एक वेदांत दर्शन है। जीवोपाधि, जो कार्य उपाधि की चर्चा चल रही थी, उसका अंत हो जाना ही जीव भाव का अंत है, और जीव भाव का अंत होना ही जीवन का अंत है। फिर कोई उपाधि नहीं रहेगी, तब वह हमारा अंतिम प्राप्तव्य होगा। ब्रह्म प्राप्ति अंतिम प्राप्तव्य है और ब्रह्म ज्ञान अंतिम ज्ञातव्य है। हालांकि प्राप्तव्य और ज्ञातव्य ये शब्द का प्रयोग करना भी बेकार है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्त होता तो प्राप्तव्य ये नियम लागू होता, ब्रह्म अज्ञात होता तो ज्ञातव्य ये विधि लागू होती। ब्रह्म अप्राप्त भी नहीं है, ब्रह्म अज्ञात भी नहीं है, इसलिए प्राप्तव्य कहना भी गलत है और ज्ञातव्य कहना भी गलत है। फिर भी जानना चाहने वाला जिज्ञासु अप्राप्त की वासना से ग्रसित है, इसलिए उसको अप्राप्त की वासना से ग्रसित है, इसलिए उसी भाषा से उसको समझाया जाता है कि आज यदि तुमको अप्राप्त हुआ है तो प्राप्त होगा, क्योंकि जानने वाला जिज्ञासु अज्ञात की वासना से ग्रसित है, बार बार सुबह से शाम तक रो रहा है कि मैं ब्रह्म को नहीं जान पा रहा हूं, नहीं जान पा रहा हूं, अज्ञात की वासना से ग्रसित है, तब उसको उसी वासना से समझाया जाता है कि वो उसका ज्ञात होगा, अन्यथा ब्रह्म प्राप्ति और ज्ञात ये दोनों शब्द बेकार हैं। अप्राप्त वस्तु में प्राप्तव्यता रहती है और अज्ञात वस्तु में ज्ञातव्यता रहती है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है अतः ज्ञातव्यता नहीं, ब्रह्म अपना ही स्वरूप है अतः प्राप्तव्यता नहीं। ये आरोपित ज्ञातव्यता और आरोपित प्राप्तव्यता है। तब उसी भाषा से हम कह रहे हैं कि तुम्हारा अंतिम प्राप्तव्य क्या है और कैसा है वो अंतिम प्राप्तव्य, तुम्हारा अंतिम ज्ञातव्य क्या है और कैसा है वो अंतिम ज्ञातव्य, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कोई प्राप्त करना अवशेष नहीं रहता है, जिसको जानने के बाद फिर जीवन अंत हो जाता है, जीवन का अंत होता है। शरीर का अंत तो मूर्ख में भी होता ही रह रहा है और होता ही रहेगा, और जानने के बाद भी शरीर का अंत तो होगा, लेकिन एक ही शरीर का अंत होगा। जब तक नहीं जानोगे तब तक न जाने कितने शरीरों का अंत होता रहेगा और कितने शरीरों का आरंभ होता रहेगा, और जान लेने के बाद केवल एक शरीर का अंत होगा, फिर दोबारे शरीर की प्राप्ति नहीं होगी तो अन्य शरीरों का अंत नहीं होगा। और ये शरीर का अंत जो है दो प्रकार से होता है। जब तक उस तत्व को आप नहीं जानोगे तब तक अन्नमय कोष बार बार पैदा होगा और बार बार नष्ट होगा, भौतिक शरीर प्राप्त होता रहेगा और नष्ट होता ही रहेगा। और जब उसको जान लोगे तो फिर कारण शरीर नष्ट हो जाएगा, कारण शरीर नष्ट हो जाने के बाद फिर कोई शरीर प्राप्त नहीं होंगे। ये कारण शरीर एक ऐसा तत्व है, ऐसा शरीर है, वह सृष्टि के आरंभ में आपके अस्तित्व के साथ इसका अस्तित्व है। जीव के अस्तित्व के साथ कारण शरीर का अस्तित्व है और कारण शरीर के साथ जीव का अस्तित्व है। जीव और कारण शरीर ये दोनों का एक ही साथ अस्तित्व हुआ है, क्योंकि कारण शरीर से ही जीव बना है, और जीव भाव और कारण शरीर एक ही साथ नष्ट होगा। तो श्रुति कह रही है तुम्हारे अंतिम प्राप्तव्य ऐसा है, न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य। अस्य माने उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का जो तुम्हारे द्वारा अंतिम प्राप्तव्य है, उस ब्रह्म का जो तुम्हारे द्वारा अंतिम ज्ञातव्य है, जिसको जानने के बाद जानने लायक कोई पदार्थ नहीं रहेंगे, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद प्राप्त करने लायक कोई पदार्थ नहीं रहेंगे, सब नालायक हो जाएंगे। ब्रह्म प्राप्ति के बाद पति लायक रहेगा कि नहीं, वो भी नालायक हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ब्रह्म प्राप्ति के बाद, परमात्मा प्राप्ति के बाद पत्नी लायक रहेगी कि नहीं, वो भी नालायक हो जाएगी। बाप भी नालायक हो जाएगा, मां भी नालायक हो जाएगी। ब्रह्म प्राप्ति के बाद मां लायक ही होगी रहेगी कि नहीं, वो भी नालायक ही रहेगी। क्यों? तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, तत्र गुरु, गुरु भी नालायक हो जाएगा उस समय। ब्रह्म प्राप्ति के बाद गुरु भी नालायक हो जाएगा। लायक माने योग्य, नालायक माने अयोग्य, लायक माने आवश्यक, नालायक माने अनावश्यक। क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति के बाद गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए गुरु क्या होगा, है नालायक हो जाएगा। शब्द प्रयोग करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे पाप लगने वाला नहीं है तुमको। पाप कब तक लगेगा? पाप कब तक लगेगा? जब तक उसको प्राप्त नहीं करोगे तब तक पाप लगेगा। उसके प्राप्ति के बाद फिर गुरु को यदि तुम कहोगे गुरु तुम नालायक हो, यानी अनावश्यक हो, तुम्हारी आवश्यकता मुझे नहीं है, ये तुम कह भी नहीं पाओगे। कहने की तो बातें ही छोड़ दो, कह ही नहीं पाओगे। और यदि तुम इसे कहते हो तो फिर तुम नालायक हो जाओगे, ये बात ख्याल रख लेना। क्योंकि ये सब शब्द के द्वारा व्यवहार, उसके बाद तो तुम्हारी वाणी भी अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद बच्चे और कोई नहीं रहेगा, तो वाणी कैसे प्रवृत्त होगी? ध्यान से सुनना ये सब प्रसंगों को, अन्यथा नहीं लेना। क्योंकि वेदांत की ये सब प्रक्रिया है, इन रहस्य को नहीं जानने के बाद बड़ी समस्याएं हो जाती है अज्ञानियों के लिए। ये सारे प्रसंग इतने जटिल, इतनी समस्या हो जाती है कि बाप से जब झगड़ा हो जाता है तो महात्मा ने कहा कि ब्रह्मज्ञान होने के बाद बाप नालायक हो जाता है, तुम कहने लग जाओगे। जब मां से झगड़ा जब हो जाती है तब फिर तुम ब्रह्मज्ञानी का नाटक करके कहोगे कि महात्मा ने कहा कि ब्रह्मज्ञान हो जाने के बाद मां नालायक हो जाती है। तब पति से जब झगड़ा हो जाता है तो तुम ब्रह्मज्ञान का नाटक करने लग जाओगे कि भाई महात्मा ने कहा ब्रह्मज्ञान हो जाने के बाद पति नालायक हो जाता है, महात्मा ने कहा ब्रह्मज्ञान हो जाने के बाद पत्नी नालायक हो जाती है। ठीक है, पति नालायक हो जाए या पत्नी नालायक हो जाए, उसके बाद शरीर लायक रहेगा कि नहीं? तुम्हारा शरीर लायक रहेगा कि नहीं? तुम्हारे लिए भोजन लायक रहेगा कि नहीं? तुम्हारे के रहने के लिए घर लायक होगा कि नहीं? तुम्हारे लिए पैसा संपत्ति लायक होगी कि नहीं? यदि ये सब कोई किसी की आवश्यकता नहीं महसूस करते हो तो कोई बात नहीं, पति नालायक हो जाए तो भी, झगड़ा हो गया तो नालायक हो गया, और झगड़ा नहीं हुआ तब तक लायक रहेगा, ये तो तुम्हारी बदमाशी है। ब्रह्मज्ञान एक ऐसा चीज है, आत्मतत्व ऐसा है, ब्रह्म ऐसा तत्व है, परमात्मा ऐसा तत्व है। सुखदेव को बाप की लायकता नहीं रही, सुखदेव को बाप में बाप की लायकता नहीं रही, तब क्या हुआ? वेदव्यास जी को पुत्र की लायकता है, पुत्र पुत्र कहते हैं, और वेद सुखदेव जी को बाप की लायकता नहीं रही है, उनको कोई भी लायकता नहीं रही है। अनपेत कृत्यम, कोई भी जात से लेकर कोई संस्कार नहीं हुआ, वेद नालायक हो गया। अब ये रहस्य समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सुखदेव जी के लिए वेद अब क्या हुआ? वेद खुद नालायक हो गया। ये उर्दू शब्द तो प्रयोग हुआ है, नालायक माने अनावश्यक, वेद की कोई आवश्यकता नहीं रही, तो वेद उसको अनुशासन नहीं कर सकते। सुखदेव जी वेद के अनुशासन से बाहर हो गए। निस्त्रेर गुण्य पथि विचरता को विधि का निषेध, जो गुणातीत अवस्था अपने स्वरूप में अब अवस्थित हो जाता है, उसके बाद फिर संसार में कोई भी विधि निषेध कुछ भी लागू नहीं होता। तब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो प्राप्तव्य क्या है, कैसा है? न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य अस्य रूपम, जिसको तुम जानना चाह रहे हो, जिसको प्राप्त करना चाह रहे हो, वो तुम्हारा प्राप्तव्य, अंतिम प्राप्तव्य और अंतिम ज्ञातव्य, ये मैं शब्द हमेशा प्रयोग कर रहा हूं, वो तुम्हारा अंतिम प्राप्तव्य और अंतिम ज्ञातव्य, उसको प्राप्त जब तक नहीं करोगे संसार में बहुत कुछ प्राप्तव्य रहेगा, और उसको प्राप्त नहीं करोगे जब तक, तब तक उसको नहीं जानोगे तब तक संसार में बहुत कुछ ज्ञातव्य रहेंगे, बहुत कुछ जानना बाकी रहेगा। उसको जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक संसार में बहुत कुछ करना बाकी रहेगा, उसको जानने के बाद कोई करना नहीं पड़ेगा, अंतिम कर्म है वो। जबकि वो कर्म उपलक्षण मैंने पहले कह दिया है, उसका ज्ञातव्यता ये भी आरोप है, उसका प्राप्तव्यता ये भी आरोप है, मोक्ष कर्तव्यता ये भी आरोप है। इन सब आरोपित कर्तव्यता, ज्ञातव्यता, प्राप्तव्यता का अंत हो जाएगा,
நசந்திருஷே திஷ்டதி ரூபமஸ்ய அஸ்ய பிரம்மண உஸ் பரமாத்மா கா, துமாரி ஆத்மா கா ரூபம் சந்திருஷி ந திஷ்டதி, திருஷ்யோ மே நீ ரே சக்தா ஹை. சப்த ஸ்ருதி நே படா விசித்திர சப்த பிரயோக் கியா ஹை. உஸ்கா ரூப திருஷ்ய கே ரூப் மே நீ ரஹதா ஹை. ந சந்திருஷே திஷ்டதி ரூபம் அஸ்ய, அஸ்ய ரூப சந்திருஷே தர்சன விஷயே, திருஷ்டி விஷயே ஆக கே விஷய, திருஷ்டி கே விஷய கே ரூப் மே வஹ ரஹி நீ சக்தா ஹை, டீக ஹீ நீ சக்தா ஹை. வஹ குர்சி ஜைசா நீ ஹை கி ஆக் சே திகா ஜாய, வஹ ஃபூல் ஜைசா நீ ஹை கி ஆக் சே தேகா ஜாய், வஹ திருஷ்ய கே ரூப் மே நீ ஆதா. யஹி தோ அஷ்டாவக்ர கீதா மே மஹர்ஷி அஷ்டாவக்ர நே ராஜா ஜனக் கோ கஹா. ஜனக் நே கஹா, மஹாராஜ் பஹுத் வர்ஷ பீத் கயே உஸ்கே தர்சன் கே லியே மே பஹுத் கோஷிஷ் கர் ரஹா ஹூன் லேகின் அபி தக் உஸ்கா தர்சன் நஹீ ஹோ பா ரஹா ஹை. ஷாயத் ஜனக் யே பீ கஹனா சாஹ ரஹே ஹோ கி மஹாராஜ் பஹுத் ஜன்ம பீத் கயே உஸ்கே தர்சன் கே லியே அபி தக் தர்சன் நஹீ கர் பா ரஹா ஹூன், ஆர் பஹுத் வர்ஷ பீத் கயே உஸ்கே தர்சன் கே லியே பிரயத்ன கர்தே ஹுயே உஸ்கா தர்சன் நஹீ ஹோ பா ரஹா ஹை. தர்சன் ஹோ ந பானே மே காரண கியா ஹை மஹாராஜ், குச்ச பதாயியே. மஹர்ஷி அஷ்டாவக்ர ஜி நே ஏக் ஹி காரண பதா தியா ஹை. அயமேவ ஹி தே ராஜன், ஹே ராஜன் துமாரே லியே யஹி சமஸ்யா ஹை. அயமேவ ஹி தே பந்த த்ரஷ்டாரம் பஸ்யசி இதரம், உஸ்கே தர்சன் ஹோ ந பானே மே யஹி துமாரே லியே சமஸ்யா ஹை, கியோகி உஸ்கோ தும் த்ரஷ்டா கோ த்ருஷ்ய கே ரூப் மே தும் தேக்னா சாஹதே ஹோ. யே சப்த ஆப்கோ சமஜ் மே ஆயா கே நீ? த்ரஷ்டா கோ மானே தேக்னே வாலா கோ, வாலே கோ தும் திகாயி படனே வாலே பதார்த்த கே ரூப் மே தேக்னா சாஹோகே தோ கைசே சம்பவ் ஹோகா? யே சம்பவ் ஹோகா? ஜப் ஹமாரே கல் ஸ்டோன் கா ஆபரேஷன் ஹுவா தோ டாக்டர் நே ஆபரேஷன் கர்னே கே பாத் உஸ் பித்த கே தைலியோ மே ஜமே ஹுயே பத்தரோ கே டுக்டே கோ பிளேட் மே ரக்கர் ஹம்கோ திகா தியா கி மஹாராஜ் யே ஆப்கே பித்த கே தைலி மே இத்னே பத்தர் தே, யே சப் ஆப்கே பித்த கே தைலி கே பத்தர் ஹே, ஆப்கே பேட் கே அந்தர் தே, யே சப் திகா தியா உஸ்னே. ஹம் தேக் சகே, ஆக்கோ சே தேகா. இசி தர ஜப் தாந்த் நிக்லா தோ டாக்டர் நே பிளேட் மே லா கே ரக் தியா. ஆப் லோகோ கே பேட் கே கை பார் டியூமர் டியூமர் நிகால் கே பிளேட் மே லா கே தேகா தியா. யே ஆப்கே பேட் கே காண்ட் ஹே, யே ஆப்கே ஆந்த்ரி கே காண்ட் ஹே, கை சீஜ் ஆப் அந்தர் கே தேக் சக்தே ஹோ. லேகின் கோயி துனியா மே கோயி ஐசா டாக்டர் நஹீ ஹோகா கி கஹோ கி மே இஸ் சரீர் கே அந்தர் கிஸ் ரூப் மே ஹூ கைசா ஹூ முஜே பஹார் நிகால் கர் திகா தோ. யே சம்பவ் ஹோகா? ஆப்கோ இஸ் சரீர் சே பஹார் நிகால் கர் டாக்டர் யே திகா தே கி யே சரீர் மே தும் இஸ் ரூப் மே தே, சம்பவ் ஹோகா? ஆர் தும் தேக் பாஓகே? தேக் பாஓகே தும்? சம்பவ் ஹி நீ ஹை. இசிலியே கஹதே ஹே கி அயமேவ தே ரூபம் திரஷ்டாரம் பசியசி இதரம், ஏ ஜனக் துமே பிரம்ம தர்சன் ந ஹோனே பானே மே ஆத்ம தர்சன் ந ஹோ பானே மே யஹி சமஸ்யா ஹை கி தும் ஹமேசா பிரம்ம கோ பரமாத்மா கோ ஆத்மா கோ பகவான் கோ ஜோ குச் கோ கஹோ தும் திருஷ்ய கே ரூப் மே தேக்னா சாஹதே ஹோ, ஜப் தக் தப் தக் வோ சம்பவ் ஹோகா நீ. கிஸ்கோ? த்ரஷ்டா கோ. த்ரஷ்டா கே ரூப் மே அனுபவ் கர் சக்தே ஹோ, த்ரஷ்டா கோ த்ருஷ்ய கே ரூப் மே அனுபவ் நஹீ கர் சக்தே, த்ருஷ்ய கோ ரூப் மே தேக் நஹீ சக்தே. ஸ்ருதி நே யஹி பாத் யஹாம் கஹி. இசி ஆசய சே முஜே லக்தா ஹை அஷ்டாவக்ர ஜி நே ஜனக் கோ வஹாம் சம்ஜாயா ஹை, கியோகி அஷ்டாவக்ர நே ஜோ பீ பாத் கஹி ஹை வோ உபநிஷத் கி பாத் கஹி ஹை. ந சந்திருஷே திஷ்டதி ரூபமஸ்ய ந சக்ஷுஷா பஸ்யதி கஷ்ச நயனம். இது பாத்தாயே उसका रूप दृश्य के रूप में दृश्य में नहीं रहता है और तुम्हारी आंखों में तुम्हारी दृष्टि में उसको देखने की क्षमता नहीं रहती है। इसका मतलब हुआ कि ब्रह्म का रूप दृश्य होने की क्षमता नहीं है, दृश्य बनने की योग्य नहीं है, वो दृश्य बनने के योग्य नहीं है वो, और तुम्हारी आंख उसको देखने के योग्य नहीं है। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्, इस वाक्य का अर्थ उपलक्षण है, चक्षु उपलक्षण है, समस्त इंद्रियां उसको अपने विषय नहीं बना सकते। चक्षुर इंद्रियां लाल पीला हरा नीला इत्यादि सप्तरंग को अपना विषय बना सकती है, ग्राण इंद्रिय सुगंध और दुर्गंध को अपना विषय बना सकती है, रसन इंद्रिय कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण कषाय षड रस को अपना विषय बना सकती है, त्वच इंद्रिय उष्ण और शीत स्पर्श को अपना विषय बना सकती है। इसी प्रकार से श्रोत्र इंद्रिय प्रिय प्रिय शब्द को अपना विषय बना सकती है, इष्टानिष्ट शब्द को हिताहित शब्द को अपना विषय बना सकती है, लेकिन इसके अलावा और किसी को भी अपना विषय नहीं बना सकती इंद्रियां। इस तरह ब्रह्म को आत्मा को तुम्हारे द्वारा अंतिम ज्ञातव्य को ये इंद्रियां अपना विषय नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि वह ब्रह्म, वह तुम्हारा ज्ञातव्य प्राप्तव्य ब्रह्म लक्ष्य, वो इनके विषय के रूप में परिणत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस समय वो विषय के रूप में परिणत हो जाएगा वो फिर वो ब्रह्म होगा ही नहीं, वो फिर विषय हो जाएंगे। डोरी जिस समय सर्प के रूप में परिणत हो जाएगा, डोरी जिस समय सर्प के रूप में परिणत होगा तब तुम्हारे आंख का विषय बन जाएगा, तब तुम देखकर तुम डरोगे, तुम भयभीत हो जाओगे, और जबकि डोरी सर्प के रूप में परिणत होता ही नहीं है।